لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجهم وأهلك أدوهم، ولعنة الله على دارهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. صلوات دنیا ہی مرتبوں کی جنگ ہے، بندے کو اپنے عبد کے ساتھ، بندے کو بندے کے ساتھ، بندے کا اپنی ذات کے ساتھ، مرتبہ ہی نہیں پتا ہے کہ کیا ہے اور کتنا رکھنا چاہیے. پورے قرآن سے اگر سمدیت سمجھ سکے کوئی، سمدیت کہ اللہ سمد ہے، اللہ السمد، انسفیشنٹ، سیلف سفیشنٹ، خدا نہ خواستہ سیلف سفیشنٹ، رب کو ضرورت نہیں ہے کسی کی، اسے یہ بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تمہیں پیدا کرتا، اور تمہیں پیدا کرنے کے بعد بھی اس کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ تمہاری بات سنتا، مگر اس نے پسند کیا ہے، اس نے یہ پسند کیا ہے، لہذا اس کا مرتبہ تمہاری زندگیوں میں جو پلیسمنٹ رکھنا چاہیے تھا، جو سٹینڈنگ رکھنا چاہیے تھا، در حقیقت ہماری عزت کا شرف یہی ہوگا کہ جی اچھا درود پڑھ لیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک، ہماری عزت کا شرف یہی ہے، عزت کا شرف یہی ہے کہ زندگی میں مرتبوں کا تعین ہو. اسی لیے اللہ نے انسان کو اتنا اشرف بنایا کہ وہ اس مرتبوں کو سمجھ سکے، سمدیت کو سمجھ سکے کہ میرا اور میرے رب کے درمیان جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، کیا وہ زندگی میں میری واقعاً حقیقتاً اکبر ہے یا نہیں. تو جب انسان اپنے اور انسان دوسرے انسان کے درمیان کے مرتبے کو نہیں سمجھ پایا ہے، اپنے اور فرشتوں کے درمیان کے رشتے کو نہیں سمجھ پایا ہے، وہ اپنے اور اللہ کے رشتے کو کیسے سمجھے گا. یہی تو شاید وہ وجہ تھی کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، نور سے نہیں پیدا کیا. آئیے یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ نور سے پیدا ہوا ہے، نور سے نہیں، مٹی سے پیدا ہوا ہے. اگر انسان نور سے پیدا ہوتا تو بھی شاید وہ جو فرشتے سب جھکے تھے سجدے کو، وہ جھکتے، لیکن شاید ابلیس بھی اس وقت جھک جاتا سجدے کو. کیوں؟ کیونکہ معیار سجدہ جو ہے، معیار سجدہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا، معیار سجدہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کون ہے، معیار سجدہ تو یہ تھا کہ کہہ کون رہا ہے کہ سجدہ کرو. آپ سمجھے میری بات. ابلیس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں انکار کرتا ہوں سجدے سے، وہ کیا تھا؟ اگر معیار عبادت ہوتا کہ میں 6000 سال پرانا عابد ہوں، 6000 سال کی میری عبادتیں ہیں، میں اس سے عبادت کے تحت افضل ہوں، اور یہ تو ابھی اس نے روح ابھی ابھی پھونکی گئی ہے، اس نے تو ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں بجا لایا ہے، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو اگر یہ کرائیٹیریا ہوتا، اگر عبادت کرائیٹیریا ہوتا افضلیت کا، آپ سمجھ رہے اس نقطے کو، اگر عبادت کرائیٹیریا ہوتا کہ میں افضل ہوں، عبادتوں کے تحت افضل ہوں، تو میں اسے نہیں کروں گا سجدہ. مگر یہ نہیں تھا نقطہ، یہ ہرگز نہیں تھا نقطہ، تو صرف اتنا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، وہ بھی ایسی مٹی، ایسی مٹی جس میں سے بو آتی ہے. مولا کائنات کے جملے ہیں. اگر یہ انسان अगर ये इंसान का पुतला नूर से बना होता और मुअत्तर मिट्टी से बना होता, खुशबूदार मिट्टी से बना होता, जिसे देख के फरिश्ते कहते कि अरे ये तो मुझसे बरतर है, मुझसे अफजल है, मुझसे सुपीरियर है, क्योंकि ये नूर का बना है और मुझसे इसलिए सुपीरियर है क्योंकि इसमें से खुशबू जो आती है वो हमारे वजूद को मुअत्तर करती है, लिहाजा सबके सब झुक जाते सिजदे में। रब को दुनिया को यही बतलाना था कि सिजदे का मयार तस्लीम पर हुआ करता है, सुपरफिशियल अपीयरेंस पर नहीं हुआ करता, इंसान के जाहिरी हुस्न और जमाल पर नहीं हुआ करता। ये बात तो वहीं से तय हो गई थी, पहले सिजदे से तय हो गई थी, जिस पर इमाम की हदीस है कि तुम्हारा जो जिस्म का हुस्न है, जो तुम्हारा हुस्न है वो तुम्हारे जिस्म का कमाल है, मगर तुम्हारी रूह का असली कमाल यही है कि वो खुदा जैसी हो जाए। तुम्हारी रूह का कमाल ये, क्योंकि तुम्हारे अंदर फूकी गई है रूह अल्लाह की। तो हम इंसान के जाहिरी जिस्म को तो देख लेते हैं मगर उसके अंदर फूकी गई अल्लाह की रूह को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी के तायुन गलत हैं, हमारी जिंदगी के तायुन बहुत गलत हैं। क्योंकि आप खुद तसव्वुर कीजिए, लामहदूद सिफात का हामिल परवरदिगार की जात, जब वो अपनी फितरत के औसाफ किसी के साथ शेयर करता है, जब मालिक किसी को बांटता है, और समदियत का जुमला मत भूलिए, उसको जरूरत भी नहीं थी कि वो बांटता, उसको कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसको रिटर्न की हाजत नहीं है, उसे जरूरत नहीं थी कि वो शेयर करता, मगर उसने पसंद किया। जब उसने ये अपनी सिफतें बांटी हैं लोगों में, तो कभी भी इंसान की कैपेसिटी को, उसकी अजमत और मर्तबत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंसान इतनी लामहदूद सिफतों का मालिक है कि कभी भी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं चाहिए, कभी भी उसके मर्तबों की ग्रेडिंग करना हमारे इख्तियार में नहीं है। इंसानी मर्तबों की ग्रेडिंग कभी भी उसके जाहिरी खदोखाल, उसके लिबास, उसके रंग रूप, उसके रहन सहन, बल्कि उसकी जहनियत से भी नहीं करनी चाहिए। ये अल्लाह जानता है कि वो किसको कितना मर्तबा देता है। आगे बढ़िए, जिंदगी का तायुन फिर कहाँ खराब हो रहा है? जिंदगी का तायुन पिछले तो जिंदगी से ये देख लीजिए कि हमने उठाया क्या है। जो पिछली जिंदगी है थोड़ा सा उसकी गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आइंदा की बात करते हैं। पिछली जिंदगी या तो पछतावों पर खड़ी है या फिर हुसूल पर। अगर पछतावा भी है खुदा ना खास्ता किसी की जिंदगी में, ऐसा तो नहीं है कोई किसी ने भी परफेक्ट लाइफ तो नहीं गुजारी है ना, अगर पछतावे भी हैं तो पछतावे अगर जिंदगी को तरतीब और तरबियत दे जाते हैं तो वो भी पछतावे अल्लाह की बहुत बड़ी इसलाह होते हैं। वो पछतावे भी बहुत नसीब वालों को नसीब होते हैं, हादी दुनिया को तो पछतावा ही नहीं है। पछतावे भी जिसके पास हैं, रिग्रेट्स भी जिसके पास हैं, अगर वो आपको तरतीब जिंदगी और तरबियत किरदार दे जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी नेमत है। अब जिसकी जिंदगी हुसूल से हासिल है, जो अकम्पलिश्ड है हर चीज, यानी सक्सेसफुल जिंदगी गुजार रहा है, पछतावा नहीं है, रिग्रेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब एक सवाल है आपसे। अकम्पलिशमेंट का सेंस इंसान को, कम्प्लीशन का सेंस इंसान को, मुकम्मल कैफियत का सेंस कब होता है? कब होता है? जब वो देखता है कि उसका अमल उसे अजर सवाब इसी दुनिया में दिखा रहा है। अमल उसका अजर सवाब इसी दुनिया में दिखा रहा है। देखिए, जब इंसान नेकी करता है तो उसके नामा अमल में फौरन सवाब लिख दिए जाते हैं, मगर रब का करम ये है, उसकी फैयाजी ये है कि वो मुंतजर नहीं रहता कि जो रोजे हशर आए तो ही इसका अजर दूं। सवाब एक ऐसा मुसलसल प्रोसेस है कि इंसान अमल चाहे एक बार करे मगर उसके इफेक्ट्स मुसलसल जारी और सारी रहते हैं। सवाब के जो इफेक्ट्स हैं, जो अजर के जो सवाब हैं, वो मुसलसल इंसान की जिंदगी के साथ जलते रहते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में वो सवाब के इफेक्ट्स चल रहे हैं तो तसव्वुर कीजिए कि आपकी जिंदगी मुकम्मल है और कामयाब है। और अगर नहीं है, वो अजर और सवाब के इफेक्ट्स नहीं देख रहे हैं आप, तो उसको कैसे पता चले कि मेरी जिंदगी में अजर सवाब चल रहा है या नहीं? देख लेना, अगर नेकियों का मर्तबा बुलंद होता है तो समझना अल्लाह की जानिब से वो नेकियां अपने इफेक्ट्स दिखा रही हैं। अगर नेकियों के मर्तबे बुलंद होते हैं तो देखना, नेकियों के मर्तबे अगर बुलंद होते हैं तो क्यों? क्योंकि दो दिन बराबर थोड़ी होते। बेहतरीन आइंदा दिन वो है कि जो पिछले दिन से बेहतर हो। दो दिन बराबर नहीं होते। अब यहाँ छठे इमाम की ये हदीस है, के दो जुमले सुन लीजिए। दो दिन बराबर नहीं होते, यहाँ जो बेपरवाह है वो महरूम है। अच्छा, जो बेपरवाह है वो महरूम है। क्या बेपरवाह हैं आप? किस बात की बेपरवाह की है? किस बात की बेपरवाही है? कल आज सबसे बड़ा इंसानी मसला है, सबसे बड़ा इंसानी मसला यह है कि एक वेरी नॉन केयरिंग एटीट्यूड हो चुका है हमारा। हमें हर चीज किसी चीज की परवाह नहीं है। एक नॉन बॉदर्ड एटीट्यूड, एक नॉन केयरिंग एटीट्यूड के मुझे नहीं परवाह किसी चीज की। एक इंतहाई झुंझला देने वाला जुमला है, एक इंतहाई बेजार कुन कैफियत, एक इंतहाई इरिटेटिंग फीलिंग इंसान के अंदर की। थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए, क्योंकि बाहर आने वाली अजादाराने इमाम जब खुले सहन में बैठती है अच्छा नहीं लगता। दुरूद पढ़िए और आगे तशरीफ ले आइए। जितना अपने आप को इस दर से खरीद पाएंगे उतना तख्वियत से खरीद पाएंगे। बातिनी तौर पे कौन कितना करीब है ये तो आप जाने, जाहिरी तौर पर करीब होकर दिखाइए। तशरीफ ले आइए, आगे और तशरीफ ले आइए। जो बेपरवाह है, जो बेपरवाह है वो महरूम है। इंसान बेपरवाह हो चुका है और वो महरूम किस चीज से है? जो बेपरवाह है वो महरूम है तो किस चीज से महरूम है? कल कुछ बातें आपको बताई थी ना, मोहब्बत से महरूम हो जाता है इंसान बेपरवाह होकर, इज्जत से महरूम हो जाता है बेपरवाह होकर, और लोगों से दुआएं लेने से महरूम हो जाता है बेपरवाह होकर। जब आपके पास उनकी परवाह नहीं है, जब आप उनके बारे में केयर नहीं करते, तो सारी दुनिया को आप क्यों नजर आएंगे अपनी मुनाजात में, क्यों नजर आएंगे अपनी मोहब्बतों में, क्यों नजर आएंगे अपनी हुरमत और एहतराम में, क्यों नजर आएंगे? ये है सबसे बड़ी महरूमी, ये है सबसे बड़ी महरूमी। जो बेपरवाह है, जिसे परवाह नहीं है, जिसमें हमदर्दी नहीं है, जिसमें एहसास नहीं है किसी का, वो महरूम है। मौला ने कहा है ना, बेपरवाह तो महरूम। और किस चीज से महरूम होते हो जानते हो? और परवाह करने की तुम्हें जरूरत क्यों है? क्योंकि तुम्हारा मजहब वो वाहिद मजहब है जो तुम्हें इस दुनिया से एलिवेट करके एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जहां मौला कहते हैं, अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं, कुछ लोग हैं इस दुनिया के लिए काम करते हैं और जब इस दुनिया से जाते हैं तो बहुत महफूज समझते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना जमा कर रखा है कि उनके बाद उनकी आलो औलाद खा सके। आपने सोचा महफूज होने का मयार क्या है? महफूज होने का मयार मेरे जाने के बाद, यानी मेरी अश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस पर खड़ी है, मेरे बाद मेरे आल और औलाद पल जाएगी, तो मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ। मौला फरमाते हैं दूसरे रुख पर वो लोग खड़े हैं जो रहते इस दुनिया में हैं, काम उस दुनिया के लिए करते हैं और ये दुनिया उन्हें हमेशा अपनी निगाहों में बगैर अमल के काफी हो जाती है। बहुत काबिले गौर है ये जुमला, बगैर अमल के काफी हो जाती है। मालिक तू तो ये कहता है कि बगैर अमल के दुनिया में कुछ नहीं मिलता, तू ये कहता है बगैर अमल के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। यहाँ मौला फरमाते हैं कि जो आखिरत के लिए कोशिश कर रहा है दुनिया बगैर अमल के उसके लिए काफी हो जाती है। कॉमन सेंस की बात है, जिस इंसान की प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो जाए, जिस इंसान की जिंदगी में तरतीब बदल जाए, पसंद नापसंद बदल जाए, तो उसके लिए तो बहुत थोड़ी सी चीजें भी बहुत ज्यादा लगती है ना। बहुत थोड़ी सी दुनिया, बहुत थोड़ी सी ख्वाहिशात, बहुत थोड़ी सी जरूरियात, बहुत थोड़ी सी तमन्नाएं और कुछ बाकी नहीं रहता। तो मालिक कहता है, मौला फरमाते हैं बगैर अमल के हर चीज उसे शेर करती है, शेरी बरकत से ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती है। बिकॉज बरकत देखिए, बरकत की बात की ना हमने, बरकत, बरकत अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है जिसका कोई पैमाइश नहीं है। बरकत की, बरकत का कोई नापतोल नहीं है, पैमाइश नहीं है। बरकत भी कभी कभी निगाहों में तंग पड़ जाती है, क्योंकि कुरान से बढ़कर तो कोई और जुमला नहीं जो कहता है कि अगर अल्लाह अपने भी खजाने लुटा देता, अलगारा माल खोल देता, तो भी तुम्हें पूरा नहीं पड़ता। तो बरकत भी इंसान के लिए तंग पड़ जाती है अगर शेरी ना हो, अगर शेरी ना हो, अगर फुलफिलमेंट ना हो, अगर कनात ना हो। चलिए आगे बढ़े, मालिक तो ये कहता है, इमाम तो फरमाते हैं جو بے پرواہ ہے وہ محروم ہے. کس چیز سے محروم ہے؟ اس عقیدے سے محروم ہے جو مسلمان کی زینت ہے اور کافر کے لیے لعنت ہے. اور مسلمان کی زینت کیا ہے؟ عقیدہ ہے آخرت, کہ جو یہاں پر کرتے ہیں وہ ایک روز وہاں ملے گا, اور یہ اجر و ثواب کا جو عقیدہ ہے کافروں کے پاس نہیں ہوا کرتا. بتائیے کافروں کے پاس ہے یہ عقیدہ؟ یعنی وہاں پر جو بھی کرنا ہے, جو بھی بھرنا ہے, جو پانا ہے, جو کھونا ہے, جتنا جینا ہے مرنا ہے, جو بھی ہے وہ یہی دنیا میں ہے. اس دنیا کے بعد والی دنیا کا کافر کے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لہذا اس کی حرص, اس کا طمع, اس کا ایثار, ان سب کو لگام ڈالنا بہت مشکل ہے. مگر ہمارے لیے یہ عقیدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو لہذا جو اس نعمت اجر سے, نعمت اجر سے جو محروم ہیں وہ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کرتے. لہذا امام فرماتے ہیں جو تلافی نہیں کرتا ہے اپنی غلطیوں کی, جو تلافی, جو کمپنسیشن نہیں کرتا ہے اپنی غلطیوں کی, یہ وہ ہے جس پر خواہشات کا غلبہ آ چکا ہے. یعنی عقیدہ آخرت اتنا کم پڑ گیا ہے ہماری نگاہوں میں کہ وی کانٹ ویٹ. اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, یعنی آپ راضی ہو گئے اس دنیا پر آخرت کے بدلے میں, کہ اب آپ سے برداشت نہیں ہوا, آپ سے انتظار نہیں ہوا, برداشت سے زیادہ انتظار نہیں ہوا, آپ کو توکل نہیں ہوا ایک اچھے وقت پر. تو اب کیا ہوگا؟ خواہشات کا اتنا حصول کا غلبہ, اتنا کریز, مینیاکل ڈیڈیکیشن ہو گیا ان چیزوں کی طرف, دنیا داری کی طرف, کہ انسان اپنی تلافی بھول گیا. اور تلافی بھی کیوں یاد رہتی؟ کیونکہ میں تو بے پرواہ ہوں. جب مجھے پرواہ ہی نہیں ہے تو میں نے کبھی لسٹ ہی نہیں کیا اپنے گناہوں کو. جب مجھے میرے گناہ یاد ہی نہیں ہے تو میں معافی کیوں مانگوں؟ جب مجھے میرے گناہ ہی نہیں یاد ہیں تو میں معافی کیوں مانگوں؟ میں تو ایک نان کیئرنگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہوں نا. جب گناہ ہی یاد نہیں, معافی نہیں مانگتا. اور معافی اگر مانگ بھی لیتا ہوں تو زبانی معافی ہے یہ. یا لفظ معافی نہیں کہہ رہے ہیں امام, لفظ تلافی کہہ رہے ہیں. تلافی کہتے ہیں کمپنسیشن. کمپنسیشن ہمیشہ مٹیریل فارم میں بھی ہوتا ہے, اسپرچل فارم میں بھی ہوتا ہے, فزیکل فارم میں بھی ہوتا ہے, ہر لحاظ سے. تو نہیں, یہ تو بے پرواہ لوگوں کی بات ہوئی نا. آپ اور ہم کیا ہیں؟ آپ اور ہم کیا ہیں؟ بے پرواہ ہیں خدا نخواستہ؟ نہیں. وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے؟ نہیں. پھر ہم کیوں نہیں کرتے یہ سب؟ ہم کیوں نہیں معافی مانگ سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں زندگی کا رخ بدل سکتے؟ کیا ہم دین کامل پر ہیں؟ یہ سوال ہے. ہم بے پرواہ بھی نہیں ہیں, ہم پر خواہشات کا غلبہ بھی نہیں آیا ہے, لیکن ہمارے پاس تلافی کے معیار الگ الگ ہیں. سنیے اس جملے کو غور سے سنیے. تلافی کے معیار الگ الگ ہیں. معافی ہمیشہ انسان سے مانگی جاتی ہے, ریلیشن شپ پر نہیں مانگی جاتی ہے, غلطی پر مانگی جاتی ہے. آپ سمجھے اس کیفیت کو. ہماری نگاہوں میں اگر وہ انسان بہت امپورٹنٹ ہے, بہت عزیز ہے, بہت پسندیدہ ہے یا بہت روبدار ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے جائیں, معافی مانگے اور چیزوں کو واپس سے کمپنسیٹ کر کے بحال کر دیں ایک رشتے کو. مگر جو انسان غریب اور لاچار اور بیکر, جو ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, یا جو ہم سے عہدے میں, مرتبے میں, عزت میں, شہرت میں کمتر ہے, ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس کا دل توڑا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگے. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تلافی ہمیشہ انسان سے ہوتی ہے, رشتے سے نہیں ہوتی ہے. آپ کی ریلیشن شپ کچھ بھی ہو اس انسان سے, کتنوں کو یاد رہتا ہے کسی غریب کو جھڑک دیا ہو, جبکہ رب تو کہتا ہے قلب مومن اگر ٹوٹا تو کعبے کی دیوار کے برابر ہے. وہ کس کو یاد رہتا ہے کہ کتنے مسکینوں کا اور یتیموں کا حق کبھی ہم نے غیر دانستہ طور پر, غیر دانستہ, بالکل جان بوجھ کر نہیں, غیر دانستہ طور پر ضائع کیا ہو؟ نہیں, یہ کیوں نہیں یاد رہتا؟ کیونکہ دین کامل پر انسان نہیں ہے. مولا کائنات کہتے ہیں دین کامل پر اگر رہنا ہے تو کبھی بھی خبردار, اللہ کی نہ نعمت سے مایوس ہونا, نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, نہ اس کے عذاب پر مطمئن ہونا. چلیے, یہ دو کیفیتیں آ گئیں سامنے. اللہ کی دیوی نعمت پر, نعمت سے مایوس نہ ہونا. رب کے خزانوں میں بہت ہے, بہت ہے, کمی نہیں ہے. تم مایوس نہ ہونا, تم اللہ کی راہ میں تاپسی کرتے رہو, تم اللہ کے ہدایت کے رس کی طرف دوڑو, دنیا تمہارے لیے خود بخود پوری ہوتی جائے گی. مایوس نہ ہونا. ساتھ میں فوراً مولا نے کہا عذاب پر کبھی مطمئن نہ ہونا. مولا یہ عذاب پر مطمئن کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہا وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنی زندگی کے غلط طرز پر چلتے رہتے ہیں اپنی دنیا میں, غلط طرز پر چلتے رہتے ہیں, اور یہاں پر چونکہ ان کے غلط طرز انہیں عذاب کی طرف نہیں لاتے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں جب میری کسی نے پکڑ نہیں کی تو وہاں کون کرے گا پکڑ, دنیا میں تو میں پکڑا نہیں گیا نا, اب تک انفیئرنیس پہ آئی کوڈ گیٹ اوے وتھ اینی تھنگ, اب تک مجھے کس نے پکڑا, کس میں ہمت تھی جو مجھے پکڑتا, اب تک میں نکلتا رہا ہر مصیبت سے نکلتا رہا, ہر گناہ کر کے بچتا رہا, جب اب تک بچتا چلا آیا ہوں وہاں بھی بچتا رہوں گا, یہاں میری اپنی صفاقی اور چالاکی تھی وہاں میرے پاس شفاعت ہے, ٹھیک ہے, یہاں تو میرے پاس اپنی ہوشیاری اور سمجھداری تھی, سمجھے آپ اس بات کو, عذاب پر مطمئن ہونا کسے کہتے ہیں کہ جب میں یہاں نکلتا رہا ہر مصیبت سے اور گناہ اور پریشانی سے, گناہوں کے باوجود میں نکلتا رہا اور رب نے میری اتنی ستار الوبی کی کہ جب میں مر بھی گیا تو 40 مومن تو مل گئے میرے اس صحیفے پہ دستخط کرنے کے لیے کہ بڑا اچھا آدمی تھا, کیا خوب ستار الوبی ہے اللہ کی, 40 مومن تو میں نے جمع کر ہی لیے, یہ تھا میرا مالک کی شان, دنیا میں میں ہر چیز سے گیٹ اوے ہوتا رہا تو وہاں بھی ہوں گا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جب وہاں پہنچوں گا تو جن ہستیوں نے شفاعت کے وعدے کر رکھے تھے وہ کہیں گے فما تنفعہ شفاعت الشافعین, ہم ان کی شفاعت نہیں کرائیں گے, عربی آیت اس لیے پڑی ہے تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ ہم ان کی شفاعت نہیں کرائیں گے, کیوں نہیں کرائیں گے, کیوں نہیں کرائیں گے, کیا مسئلہ ہے, آپ تو ہیں شافع محشر, آپ کیوں نہیں شفاعت کرائیں گے, کہا جس رشتے کی وجہ سے اس سے رشتہ تھا جب وہی درمیان سے نہیں رہا تو اس کا میرا کیا رشتہ, یہ اللہ کی نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا, قالوا لم نکو من المسلمین, یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا, ولم نکو نطعم المسکین, مسکین کو دھکے دے کر نکالا کرتا تھا, وَكُنَّا نَقُوزُ مَعَ الْقَائِزِينَ, لوگوں کی دیکھا دیکھی گناہ کیا کرتا تھا, حتیٰ تک الیقین, یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی توبہ اور عمل کے درمیان موت آ گئی, اس کی توبہ اور عمل کے درمیان کہ ابھی کروں گا ابھی کروں گا, یہ کہتے 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 ہم اپنی زندگی چلتے رہے, رب اپنی زندگی چلتا رہا, لہٰذا یہ کہتے کہتے کہ مالک ابھی پلٹتا ہوں ابھی پلٹتا ہوں, موت حائل ہو گئی, اور جب وہاں پہنچے تو جس شفاعت کے بھرے پر یہ آئے تھے ہم نے اب پلٹ کر کہہ دیا فما تنفعہ شفاعت الشافعین, ہم ان کی شفاعت نہیں کرائیں گے, کیونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے جو تعین تھے وہ صحیح نہیں رکھے تھے, زندگی کے جو ان کے مرتبے تھے, جو پلیسمنٹ تھی زندگی میں عزت اور احترام کی اور مرتبت اور جلالت کی اور تقوی اور پرہیزگاری کی, وہ کوئی سٹینڈنگ صحیح نہیں تھی, تو کیا ہونا چاہیے, ہم ایک عام سی بات کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی اکثر کیسے گزارتے ہیں, بہت عام سی بات کر رہی ہوں میں, کیسے گزارتے ہیں, خواہش کرتے ہوئے گزارتے ہیں, شکایت کرتے ہوئے گزارتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں نہیں, سچ ہے, خواہش کرتے ہوئے گزارتے ہیں, شکایت کرتے ہوئے گزارتے ہیں, توقع کرتے ہوئے گزارتے ہیں, اچھا شکایت کس سے, سب سے, سب سے, کیوں سب سے, کبھی زندگی میں یہی تو سب سے آسان بات ہے, جو چیز اچھی وہ میرا فضل, جو چیز خراب وہ تمہارا قصور, ٹھیک ہے, زندگی گزرتی ہے شکایت کرتے ہوئے, خواہش اپنی خواہش نہیں نہیں یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, خواہش کے معنی ہی ہو گئے ہیں اب لغت میں کہ اپنی تمنا, صرف تمنا نہیں, خواہش کے معنی ہی اب لغت میں ہو گئے ہیں میری ذاتی تمنا, کسی نے زندگی میں کبھی کسی اور کے لیے خواہش رکھی, ہاں وہ آپ ہی کے جگر کا ایک ٹکڑا ہو, ہیومن انسٹنکٹ ہے, ہر ماں اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ پیار کرتی ہے, یہ میں بیسک نیچرل انسٹنکٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں, مگر کیا کبھی کسی نے انسانیت میں بھائی اور مذہب میں شریک کے لیے کوئی خواہش کی, کیا کبھی کسی پیٹ بھرے میں جو 1000-2000 پر ہیڈ کا کھانا کھا کے نکلتا ہے سڑک پہ نکلتے ہوئے پلٹ کر دیکھا کہ کئیوں کے پاس آج سوکھی روٹی بھی نہیں ہے, کوئی بہترین لیموزین میں بیٹھا ہوا پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلنے والوں کی طرف دیکھ کر بولا کہ مالک کیا ان کی بھی سواریاں سہل ہو سکتی ہیں, کبھی زندگی میں کسی صحت مند نے کسی ہسپتال کی طرف سے گزرتے ہوئے کہا کہ مالک ان سب کو شفا یاب کر, ہاں یہ ضرور کہا مالک مجھے یہاں نہیں بھیجنا, مالک مجھے محفوظ رکھ, मालिक कब्रिस्तान, मालिक मुझे महफूज रख, हर चीज से मुझे महफूज रख, हर चीज से, यानी हर चीज में जातियात से हटकर इंसान की कोई ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं है, वो ख्वाहिश ही नहीं है जो जात के अतराफ से हो। तो कौन है इंसान जो जिंदगी के तायुन को सही कर रहा है, जिंदगी की प्लेसमेंट उसकी किसकी सही है? तमन्नाएं है तो खुद के लिए, और तवक्को है तो फिर किससे? तवक्को भी फिर खुद से होना चाहिए थी ना। देखिए, अगर शिकायत भी अपने पर महरूमी की शिकायत है कि मेरी ग्रीवियंसेस हैं, मेरी कमियां रह गई मेरे अंदर अता में कमी रह गई मालिक, तो लिहाजा जब शिकायत अपने रोने पर है, जब तमन्ना अपने खातिर है, तो फिर तवक्को भी खुद ही से होना चाहिए ना। तवक्को मगर खुद से नहीं होती, तवक्को सबसे हुआ करती है। और कैसे होती है वो सुन लीजिए, बहुत थोड़ा सा किसी के लिए करके बहुत ज्यादा पाने की तवक्को, बहुत थोड़ा सा किसी के लिए करके बहुत ज्यादा पाने की तवक्को। ये तवक्को का मयार बंदे का बंदे के साथ है, और बंदे का अल्लाह के साथ क्या मयार है? कुछ नहीं करके सब कुछ पाने की तवक्को, बंदे का बंदे से कम करके बहुत ज्यादा पाने की तवक्को। ये जिंदगी के वो आईने हैं जिसमें हम सब अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं। ये हंसने से ज्यादा रोने का मकाम है, बहुत कम करके बहुत ज्यादा पाने की तवक्को, और कुछ नहीं करके सब कुछ पाने की तवक्को अल्लाह से। और अल्लाह को आप दे भी क्या सकते हैं, अल्लाह के लिए आप कर भी क्या सकते हैं, जब कायनात का मौला ये कहता है कि मेरी कोई नेकी नहीं की, मेरा नमाज, मेरा रोजा, ये सब कुछ मेरे लिए है। चलिए ठीक है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब हम मान लेते हैं कि आपके अपने लिए, मगर जो आपका खुश मिजाजी है, आपकी नरम तबीयत है, वो किसके लिए? वो भी आपके लिए है। एक याद है ना आपको, नरम मिजाजी, नरम तबीयत, जब इंसान हर एक को मसावात की निगाह से देखता है, हर एक को मोहब्बत की निगाह से देखता है, क्योंकि उसका कनेक्शन सबका रब के साथ जुड़ता है, तो क्या वो भी आपके लिए है या किसी और के लिए है? का मौलाए कायनात ने कितना बड़ा जुमला कहा है, हर एक वफा में सदाकत नहीं होती। कौन से सुनिए, हर एक वफा में सदाकत नहीं होती। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के सदक़े उतार कर देते हैं और उसे बहुत बड़ा कार्य खैर समझते हैं कि ये चैरिटी हो रही है। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बीमारों की, अपने मुलाजमीन की एक ऐसी डेली लाइफ की मिसाल, जो नामालूम दिन में कितनी मरतबा हमारी निगाहों से गुजरती है, कहा हम अपने नौकरों का कितना ख्याल रखते हैं, हम अपने मुलाजमीन का कितना ख्याल रखते हैं, जो खुद खाते हैं वो उन्हें देते हैं, वो उसे भी आप इसलिए देते हैं क्योंकि अगर उनकी तबीयत कल खराब हो तो काम फिर आप ही पर आके पड़ता है। उन्हें बेहतर लिबास, साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा नरम दे बिस्तर आप इसीलिए देते हैं क्योंकि कल को अगर उनके जिस्म के जरासीम आपके घर में फैलते हैं तो आप ही असरअंदाज होते हैं। मौला ने जब कह दिया है हर वफादारी में सदाकत नहीं होती, अपनी नियतों को खंगाल कर देखो कि कौन अल्लाह के बंदे की खिदमत अल्लाह की खातिर करता है और कहां उसकी ही जात इन्वॉल्व है, कहां उसी की जात इन्वॉल्व है। अल्लाह को बंदा कुछ नहीं दे सकता तो फिर अल्लाह को क्या दिया जा सकता है? क्या अल्लाह तक कुर्बानी पहुंचती है? कल जहां से गुफ्तगु का सिलसिला रुका था वहीं से आज इस कुर्बानी के सिलसिले को जोड़ देते हैं। अल्लाह ने अपने बंदे के मयार को बुलंद करने के लिए पसंद किया है फसल ले ले रब्बे का वनहर, इबादतें करो, कुर्बानियां दो, कुर्बानी दोगे तो तुम्हारी इबादतें मेराज को पहुंचेंगी, इबादत करोगे तो तुम्हें कुर्बानी का जज्बा बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह को क्या कुर्बानी पहुंचती है? तो कुर्बानी क्या है पहले ये जान लीजिए, कुर्बानी भी इंसान के लिए एक गुरूर बन के रह गई है। انسان اپنی معمولی ضروریات کو ترک کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے بہت بڑی قربانی دی. معمولی خواہشات کو ترک کر کے انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی قربانی, بہت بڑا ایثار, بہت بڑی سیکریفائز دی ہے, اور لہذا اس پر غرور کرتا ہے اور اس کا اعلان بھی کرتا ہے. چلیے وہ جو رہا سہا ثواب ملنے والا تھا وہ بھی گیا, وہ بھی گیا. کہ جو اعلان کرنے کی, کل احسان کی بات کی تھی, آج اعلان کی بات سن لی. قربانی پر اعلان کر کے انسان وہ بھی اپنے اجر و ثواب کو پھر ڈاؤٹ فل کر دیتا ہے. تو اب قربانی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, قربانی کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسان اگر خود بدل جائے تو رب اس کے لیے ماحول کو بدل دیتا ہے. انسان اگر خود بدل جائے تو رب اس کے لیے حالات کو سازگار بنا دیتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بھوکا جب دعا کرتا ہے تو اس کے لیے رزق تو شاید آسمان سے منو سلوا نہیں اترے گا, مگر اس کی بھوک میں قوت برداشت بڑھ جائے گی. آپ یہ مثال سمجھے میری, اس کی جو ریزسٹنس پاور ہے نا وہ بڑھ جائے گا, جو اس کا تھریش ہولڈ آف ریزسٹنس ہے وہ بڑھ جائے گا. تو بھوک کے لیے منو سلوا تو نہیں اترا, مگر جو قوت برداشت بھوک تھی وہ بڑھ گئی. تو یہ ہے اللہ کی مدد, یہ ہے اللہ کی مدد. تو کبھی کبھی جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا مالک ہمارے اطراف کے حالات کو بدل دے, اور دیکھتے ہیں کہ حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں, تو حالات کبھی ایسے ہی رہیں گے مگر آپ کے اندر کی برداشت بڑھ جائے گی. جب آپ کے اندر کی برداشت بڑھے گی آپ کا ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ مختلف ہو جائے گا. حالات سے گزرنے کا, زندگی کو سنوارنے کا رویہ بدل جائے گا. جب انسان اس کیفیت سے آگے زندگی گزارتا ہے تو قربانی پر انہی کو اجر ملا کرتے ہیں, یہ اجر انہی کو ملا کرتا ہے جو بے لوس ہوتے ہیں. قربانی میں غرض کا کوئی گنجائش نہیں ہے, قربانی میں غرض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس طرح کل عاجزی پر ناز کرنے سے عاجزی عاجزی نہیں رہتی تھی, اسی طرح قربانی میں غرض ڈال دینے سے قربانی قربانی نہیں رہتی ہے. بے لوس جب انسان قربانی دیتا ہے اللہ کی جانب تو پھر اسے اجر ملتے ہیں. جب اجر ملتے ہیں تو اس کی زندگی کی گزر آسان ہو جاتی ہے. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا کہ کس طرح سے زندگی گزاری جانی چاہیے تھی, ایک مشکل ترین زندگی کا معیار کیا ہونا چاہیے, تو زندگی کی جو گزر ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. جانتے ہیں کون لوگ ہیں جو زندگی سے آسانی سے گزر جاتے ہیں؟ دوہرا رہی ہوں سوال, زندگی سے کون لوگ گزرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو گزر رہے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو در گزر کر رہے ہیں. جواب سمجھے آپ, کون لوگ ہیں جو آج گزر رہے ہیں؟ وہی لوگ گزر رہے ہیں جو در گزر کر سک رہے ہیں. در گزر کرنا کوئی معمولی عمل نہیں تھا, بہت بڑا کلیجہ چاہیے, قوت دل چاہیے, بہت بڑی قوت دل چاہیے. اسی لیے قوت دل کے لیے قربانی سے پہلے عبادت کروا رہا ہوں, قربانی سے پہلے عبادت کروا رہا ہوں, کیونکہ میں تولا عبادت کا بھرم رکھتا ہوں. درد دل سوز جگر دیدائے نم رکھتا ہوں. دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. شخصیت بتا دی, اللہم صل علی محمد و علی. آپ کو کیسے سکھاتا یہ قرآن قربانی اگر شخصیت نہ ہوتی؟ قرآن نے ان شخصیتوں کو پنہا کیا, تاریخ نے انہیں نمایاں کر دیا. قرآن نے شخصیتوں کو پنہا کیا, چھپا کر رکھا ایک ایک شخصیت کی ایک ایک صفت کو اپنے آیات کے جوہر میں. قرآن نے پنہا کیا, تاریخ نے نمایاں کیا. اب تم ہو جو اسے بیان کرتے ہو, تم ہو جو اسے بیان کرتے ہو. خطیب منبر نہیں بیان کرتا اسے, بہترین ذاکر جب موجود ہو تو باقیوں کا ذکر ٹھہر نہیں سکتا. بہترین ذاکر اللہ ہے جو ذکر کر رہا ہے, قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے. لہذا تاریخ تمہیں کردار دکھا رہی ہے کہ کس طرح تین روز کے فاقے روزے فاقوں میں بدلتے ہیں, اور فاقے روزوں میں بدلتے ہیں, اور روزے فاقوں میں بدلتے ہیں. شخصیت دکھا رہا ہے تمہیں تاریخ. جب تاریخ ساز کوئی ہوتا ہے تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَنُتِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. دیکھتے جاؤ, تم کردار کو دیکھو, تم کردار کو دیکھو اور تاریخ کو دیکھو. तुम देखो कि जब इबादत गुजार की पसलियां उसके बिस्तर से आशना नहीं होती हैं, ये तुम्हें तारीख दिखा रही है, तो फिर तुम कुरान के औराक पलटो और देखो कि मालिक उसे कह रहे हैं मोहम्मद खुमिल लैला इल्ला खलीला, ठहर जाओ, इतनी देर तक इबादत करने की जरूरत नहीं है, कुछ देर वक्त आराम में भी गुजारो। तारीख हर कैफियत से तुम्हें नुमाया कर रही है कि किस तरह से वहम राक्यों वो हालत रुकू में जब अंगूठी देते हैं तब जोड़ कर देखो कुरान की आयात को इनके साथ, जोड़ कर देखो हर रवैये को, जोड़ कर देखो नज्म और जब्त और बर्दाश्त का रवैया, वल काज़मीन अल गैब उठा कर देखो कि किस तरह से वो अपने गुस्सों को पी जाते हैं। जिंदगी में अगर ये नमूने ना होते तो जिंदगी में कुर्बानी के कॉन्सेप्ट लोगों को वाजे नहीं होते। क्यों नहीं वाजे होते, क्यों नहीं वाजे होते? क्योंकि हम जिसे एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा ईसार समझ रहे हैं ना, इन्होंने दिखाया है कि ये जो चीजें तुम हमारी देखकर बहुत हैरान रह जाते हो, ये हमारे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं थी, हमारा नॉर्मल वे ऑफ लाइफ था। आप समझे इस बात को, आप समझ पा रहे हैं इस बात को, ये तीन रोज के फाके और रोजे हमारे लिए एक इंतहाई हैरान कुन बात है, उनके लिए जिंदगी का एक ऐसा मामूल था जिस पर उन्होंने न तसव्वुर किया न दोबारा तदब्बुर किया, बल्कि जब कुरान ने कहा कि मांगो तुम क्या मांगते हो तो सर क्यों मांगे, हमने किया ही क्या है, हमने तो जो किया अल्ली वजिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शकूरा, हमने तो ये जो भी किया अल्लाह के लिए किया, ना जजा के लिए किया था, ना एक्नॉलेजमेंट के लिए किया था, ना अप्रिसिएशन के लिए किया था। तो लिहाजा दर गुजर जो है वो कुर्बानी की इब्तिदा है, वो जिंदगी के हर फेज से गुजर जाते हैं बएहतियात, जिंदगी के हर फेज से बआसानी बएहतियात गुजर जाते हैं, क्योंकि दर गुजर अगर कुर्बानी की इब्तिदा है तो कुर्बानी की इंतहा क्या होगी? अगर इब्तिदा ही इतनी बेहतरीन है, अगर इब्तिदा ही इतनी सुप्रीम है, तो इंतहा क्या हो सकती है? दोबारा दोहरा रही हूँ, कुर्बानी की इब्तिदा दरगुजर है, कुर्बानी की इंतहा मुसीबत है, मुसीबतें हैं कुर्बानी की इंतहा, क्योंकि वल्लज़ीना इज़ा असाबतुम मुसीबतिन क़ालू इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, इन पर जितनी मुसीबतें डालते चले जाओ, ये कहते हैं हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ जाना है। ठीक है, इब्तिदा क्या थी? दरगुजर। इंतहा क्या है? कुर्बानी। और जो दरमियान में जो मुसीबत है, उस मुसीबत की सबसे बड़ी आसानी ये है कि वो इन्हें मुसीबत समझते ही नहीं, तो वो अफसोस किस बात का करे। ये कॉन्सेप्ट को अगर कोई समझ ले ना, कुर्बानी किसे कहते हैं कि मुसीबत को अगर कोई मुसीबत ही ना जाने तो वो गिरिया किस बात पर करेगा? अय्यूब अलैहिस्सलाम कीड़ों का वाकया, गिर गया है कीड़ा, दोबारा उसे डाल देते हैं जख्म पर। अल्लाह का इतना मुत्तकी नबी, अरे कुछ नहीं तो जरा हाथ उठाकर अपनी शिफा की तो दुआ मांग, हाथ उठाकर शिकवा तो नाउजुबिल्ला, तो नबी है मगर हाथ उठाकर शिफा की तो दुआ मांग, ये तो तेरा हक है, ये तो तेरी तरबियत का एक हिस्सा है, मांग शिफा की दुआ। नहीं मांगता, क्यों? क्योंकि तुम जिसे मुसीबत समझ रहे हो वो उसे इबादत की एक मजीद रियाजत समझता है, वो इसे मजीद एक रियाजत समझकर जब अपने सब्र को कुर्बानी का दर्जा नहीं देता, वो अपना सब्र इस लेवल पर ले आता है कि उसका सब्र कुर्बानी बन जाता है। आप समझ रहे हैं, अय्यूब का सब्र उस लेवल पर है कि वो ये नहीं कह रहे हैं अय्यूब कि मालिक मैं इस कीड़े को दोबारा जिस्म में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं ये तकलीफें सह के, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा गया है अय्यूब के बारे में। कहा मालिक मैं अपने सब्र को तेरा नाज ऐसा बनाऊंगा कि मेरा सब्र देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। अच्छा, अय्यूब का सब्र देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी, तो फिर सब्र अय्यूब की शमशीर का गौहर है हुसैन, आहुए काबे कुर्बानी दावर है हुसैन, उम्मते फिदिया मरहूमे पयंबर है हुसैन, बेकसो बेवतनो बेदिलो बेपर है हुसैन, गो के तलवार चली हल्क पे 70 बारी, शुक्र बारी किया प्यासे ने मगर हर बारी। वो उसे गम समझता ही नहीं है तो वो इस गम से निकलने की क्या दुआ करेगा? वो इसे मुसीबत समझता ही नहीं है, ये बहुत गहरा नुक्ता है। जिंदगी का बहुत गहरा नुक्ता है कि वो इसे मुसीबत जानते ही नहीं है। फिर क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? कि वो कुर्बानी को अपने अल्लाह से कनेक्ट करते हैं और ये सोच के कनेक्ट करते हैं कि हर कुर्बानी एवर लास्टिंग इफेक्ट रखेगी, हर कुर्बानी वो मुसलसल सवाब है जिसका तसलसल कभी नहीं रुकेगा। लिहाजा कुर्बानी जातियात से बरी हो जाती है। अब समझे आप, कुर्बानी में एहसास कुर्बानी भी खत्म हो जाता है, जातियात से बरी हो जाती है, एलिवेट हो जाती है, सेल्फ से एलिवेट हो जाती है, सेल्फ सेंटर्डनेस से एलिवेट हो जाती है, अपने जात से निकलकर इंसान कुर्बानी देता है। तो अब जब तकलीफ में खुशियां आए तो वो उन खुशियों को महसूस करता है। आज हमारा मसला क्या है, आज सबके पास तकलीफें हैं ना, मगर तकलीफों में हमें जो खुशियां भी मिल रही हैं हम उन खुशियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। सोचिए, गौर कीजिए, बीमार के आगे 900 नेमत रख दीजिए, शुक्र नहीं कहेगा, रोता ही रहेगा, क्या आप तो खाया ही नहीं जाता, आप तो जाया ही नहीं जाता। तकलीफ में जब खुशियां मिलती हैं, तकलीफ में जब नेमत मिलती है तो उसकी कदर एकदम खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने तकलीफ के मायार मुअय्यन कर रखे हैं, खुशियों के नहीं। तकलीफ को हम कैलकुलेट करते हैं, अगर थोड़ा सा भी दर्द हो तो हम कहते दर्द है, और जो इतना बड़ा आराम मिल रहा है उसको कोई नहीं कहता आराम है, आराम है। नहीं, खुशियां जो है वो तौली नहीं जा रही हैं, गम तौले जा रहे हैं, तकलीफें तौली जा रही हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए खुशियों को कोई रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है। थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी गम और परेशानी हो तो वो फौरन नजर आ रहा है, और जितनी ढेर सारी खुशियां लाद दी जाएं वो पूरी ही नहीं पड़ती है इंसान को। क्यों पूरी नहीं पड़ रही है खुशियां, क्यों गम इतने इंसान को खटक रहे हैं? क्योंकि अता के बाद जब कोई चीज छिन जाती है ना, उसका दर्द ज्यादा होता है। कनेक्ट करते जाइए अपने जहन में इस कुर्बानी को, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रही हूँ। अता के बाद जब कोई चीज छिन जाती है ना, उसका दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि इंसान जब वो अता अल्लाह की तरफ से जब आती है उसे एंजॉय कर चुका होता है, उसे रिलिश कर चुका होता है, उसके अंदर फ्लोट कर रहा होता है, उसे निकलने का दिल नहीं चाहता। मगर अता के बाद जब कोई चीज छिन जाए तो दर्द और गम बर्दाश्त के काबिल नहीं रहता। जबकि मालिक जब बंदे को देता है तो बंदा सब्र करता, बंदा शुक्र करता है, बंदा शुक्र करता है जब मालिक अता करता है। और जब मालिक छीन ले कोई नेमत तो बंदे को क्या करना चाहिए? जब मालिक छीन ले कोई नेमत तो बंदे को एक और सिजदाए शुक्र करना चाहिए। क्यों? क्यों? जब दे तो एक सिजदाए शुक्र, जब छीन ले तो क्यों सिजदाए शुक्र का? इसलिए क्योंकि मालिक मुझे तो सुलेमान नबी की बसूरत तूने बता दिया था कि आजमाए अल्लाह की तरफ से नेमत आती ही इसीलिए, ले यबलूनी अशकरो अम अफकरो, क्या वो मेरा इम्तिहान ले सके कि मैं शाकिर हूँ या काफिर। तो मालिक जब नेमत मुझसे चली गई है दोबारा, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मालिक मेरी आजमाइश की घड़ियां पूरी हुई, क्योंकि आजमाइश की घड़ियां पूरी हुई, हिसाब की घड़ियां पूरी हुई, हिसाब की घड़ियां पूरी हुई। लिहाजा जब इंसान अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ, जिम्मेदारी को निभाता हुआ, हर कैफियत को निभाता हुआ उस गमो अंदोह की तरफ जाता है, तो जिंदगी में कुर्बानी क्या होती है वो इनसे सीखिए। कौन है आप? जने फिरदौन, फिरौन। क्या नाम है आपका? आसिया। अच्छा, क्यों ये मर्तबे मिलते हैं आपको? कहा क्योंकि फिरौन जुल्म का सिंबल है, मीखों वाला फिरौन, और वो मीखों से क्या करता है? आसिया के जिस्म को छेद देता है। और आसिया उस जुल्म पर सब्र क्यों करती है? क्योंकि जिसकी वजह से ये जुल्म सहे जा रहे हैं उसी मालिक ने इताअत और फरमा बरदारी से आसिया को जकड़ लिया है। उसी मालिक ने कहा था शौहर की इताअत और फरमा बरदारी, तो जहां उसका मर्तबा है उसकी इताअत और फरमा बरदारी हो रही है, मगर जहां दीन पर हदफ आए और बेदीनी की तरफ आने की ताकीद की जाए शौहर की जानिब से, तो आसिया अहद अहद कहकर खड़ी हो जाती हैं, अहद अहद कहकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अहद अहद कहकर खड़ी हो जाती है। बहुत नुक्ता है ये नाजुक, अहद कहकर खड़ी हो जाती है। फिरौन वासिले जहन्नम है उसे भी पता है, मगर आसिया फिरौन को नहीं सताती। आसिया ने कभी फिरौन को सताया नहीं, और फिरौन के जुल्म की रावी आसिया नहीं है। आसिया ने अपने घर की बातें घर से बाहर जाकर नहीं की है, फिरौन के मसाइब नहीं सुनाए हैं किसी को, क्योंकि आसिया वो मुजाहिदा है जिसके लिए अली कहता है कि अगर जंग जीतनी है तो अपनी ढाल में कभी सुराख नहीं रखना, ढाल में सुराख नहीं रखना। लिहाजा अगर घर की इज्जत घर में रहे, उसे सुराख से कभी बाहर न करना। आज जमाने में गीबतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि गीबत का मवाद भी उन्हें हम ही तो देते हैं, गीबत का मटेरियल भी अपने घरों से निकाल निकाल कर उन्हें हम ही तो देते हैं। तो तुम्हारा इससे बड़ा सब्र और जब्त की कुर्बानी क्या होगी कि जहाँ अल्लाह की इताअत है तो वहाँ दीन पर तुम इस्तकामत के साथ खड़ी हो, जहाँ घर की हुर्मत और तहारत है उसे संभाल कर बैठी हो, और राजदार अगर बनाती हो तो बस अल्लाह के नबी को बनाती हो, और नबी को राजदार बनाकर। नबी को राजदार बनाती हो। इमाम हसन ने कहा है, हर एक दोस्त तुम्हारा राजदार नहीं बन सकता, जो हादी है वही तुम्हारा राजदार बन सकता है। और नबी को राजदार बना के ये नहीं कहा कि या मूसा नबी अल्लाह आओ और मुझे फिरौन के मजालिम से निजात दो, हर बार यही कहा होगा, ए मूसा नबी अल्लाह मेरे ईमान को कवी करने के लिए मुझे अल्लाह की जानिब बढ़ने के रास्ते दिखाओ, ये है मेरी मदद, फसल ले ले रब्बे का वनहर, इसे कहते हैं ये सब्र की कुर्बानी है। फिर देखो किस तरह दी जाती है कुर्बानियां। तुम्हें क्या जरूरत थी, सारी जिंदगी खामोशी में गुजार दी, जबकि तुम्हारे लिए तो वो सूखा दरख्त और खजूर गवाह है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बच्चा गहवारे में गवाही दे रहा है, इसके बाद तो तुम्हारी इस्मत और तहारत के लिए ऐ मरियम कोई चीज बाकी नहीं रही थी। कहा मगर सारी जिंदगी खामोश रहकर बता दिया कि सो में मरियम को जो आज इस तरह वाजे करेंगे कि सो में मरियम सबरे मरियम की हद को गुजर जाएगा, कि खामोश रहकर हम ईसार करते हैं, खामोश रहकर ईसार करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ये हमारी कुर्बानी है। वक्त मेरा तंग हो रहा है, इसलिए उन हस्तियों की कुर्बानियों का जिक्र करना है कि जिसके बारे में क्या कहा जाए। फैला तेरे दम से रुखे हस्ती में उजाला, बच्चों की तरह गोद में इस्लाम को पाला, बच्चों की तरह गोद में इस्लाम को पाला, तू मुमलिकते दी के लिए आखिरी हद है, रिश्ते में तू कौनैन के सादात की जद है। ऐ खदीजा तुम्हारा इशार अगर ये कहें कि इस्मत के रास्तों पर तो तू बहुत बुलंद थी, रब ने तुझे खिदमत के रास्ते से भी बुलंद कर दिया, तो ये आपकी शायान शान नहीं है बीबी। इस्मत और तहारत तो थी ही बीबी आप में, क्योंकि फातिमा की माँ जो बनना था तो इस्मत और तहारत में तो थी आप, मगर खिदमत और रियाजत में भी अल्लाह को तुझे बुलंद करना था। ये बहुत मामूली जुमले हैं, मगर इनके पीछे इशारे खदीजा के पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है वो आज ले जाइए यहाँ से। बता दिया खदीजा ने, अच्छा वक्त जब होता है, अच्छे वक्त के बाद जब बुरा वक्त आ जाए, नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला, कभी खदीजा ने उस बुरे वक्त को बुरा वक्त न समझा, क्योंकि हक था खदीजा को थोड़ा सा अहलोयाल के लिए रोक लेती, मगर नहीं, हम उसे बुरा वक्त कह रहे हैं, सूखे चमड़े खाने को हम बुरा वक्त कह रहे हैं, फाखे और पैबंद लगी हुई चादर को हम बुरा वक्त कहते हैं, उनका मयार इन चीजों से बहुत बुलंद था। ये जुमला याद रखिए, ये बातें उनकी शायान निशान नहीं है हरगिज भी, मगर हमें तर्ज जिंदगी सिखाना है कि अच्छे वक्त के बाद अगर कभी बुरा वक्त आता है तो अच्छे वक्त को भूल जाओ, अच्छे वक्त को भूल जाओ, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें तवक्कुल और खनात के साथ जीने नहीं देगा। और अगर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आए तो बुरे वक्त को हमेशा याद रखना, बुरे वक्त के बाद अगर अच्छा वक्त आए बुरे वक्त को हमेशा याद रखना, ताकि जो कोई भी महरूम हो जमाने में उनके दर्द को तुम रिलेट कर सको और महसूस कर सको। खदीजा का इशार दिखाया जमाने ने, और उसके इशार की क्या बात है। जो सरापाए इसार हो, उसके इसार को क्या कहना जो सरापाए इसार हो। फातिमा जहरा, जिंदगानी आपकी किन किन बातों का तस्किरा करें? क्या उन साखों का तस्किरा करें, या उन इबादतों का तस्किरा करें, या उन तमन्नाओं का तस्किरा करें? दुनिया की कोई भी तस्किरा इस वक्त इस लम्हे ठहर नहीं सकता। बस इतना कह दूं, फातिमा जिंदगी से तू गुजर गई, क्योंकि तेरी मुसीबत जो थी वो कोई और मुसीबत के आगे नहीं खड़ी रह सकती थी। इतना सा मौजजा भी तेरे हक में नेक है। अब भी तेरा हुसैन जमाने में एक है। बच्चों की भूख तेरा इशार नहीं थी बीबी, वो कुर्ते को सीते जाना और रोते जाना और अपने बेटे का कफन लिबास से कोना तैयार करना और बाबा से पलट पलट कर पूछना, क्या बाबा उस वक्त मैं रहूंगी। ये है फातिमा तेरी कुर्बानी। एक कुर्ता तू तैयार कर रही है और एक कुर्ता आज एक और माँ तैयार कर रही है। लाओ मेरा बाब, तैयार कर दो, नन्हे से शलूके में तैयार कर दो, पानी पिला कर ले आते हैं। जो फातिमा की तासी करते हैं ना, जो फातिमा के साथ जुड़ जाते हैं, वो ऐसे ही रूप दिखाने लगते हैं, उनकी कुर्बानियां भी इसी सिम्स पे चलने लगती हैं। माँ ने किस अरमान से तैयार किया होगा, माँ ने किस अरमान से तैयार किया होगा कि एक बार जब बच्चा गोद से बिछड़ा है तो बस वो हरारत ही रह गई थी, अब बस हरारत ही रह गई है। पीटते पीटते बेहोश जो हो जाती है, अली असगर की सदा आती है, अब बस हरारत ही महसूस करती है ये माँ तेरी अली असगर। न दिन को आराम है न रात को आराम, न साए में बैठती है, न माँ ने कभी मुस्कुरा कर अपने आप को देखा। झूले की जली हुई लकड़ी पल्लू में बांधे हुए बस धूप में बैठी है और बारिश में बैठी है। अम्मा अम्मा आज चलो, आज साए में चलो अम्मा। इमाम वक्त है, चौथा इमाम है, हुक्म दे रहा है माँ को, अम्मा साए में चलो। कहा नहीं, साए में नहीं जाना। कहा अम्मा अम्मा एक एक करके मुख्तार बदले ले रहा है कर्बला के कातिलों के। माँ की निगाहों में बेटे ने पढ़ा, क्या हुरमुला की मौत की खबर आई है बेटा। नामाबर से पैगाम भिजवाया, ए मुख्तार मेरे इमाम पूछते हैं क्या हुरमुला मारा गया। मुख्तार मचल गया। कहा लाओ हुरमुला को गिरफ्तार करके लाओ। हुरमुला लाया गया। मुख्तार ने कहा मेरे आका ने अपने बाप की खातिर का तक नहीं पूछा, पता तूने कर्बला में ऐसा क्या किया है जो मेरे मौला ने सिर्फ तेरा नाम लिया है। कहा अमीर जो हुआ वो होने दे, जो सजा तजवीज की है दे दे खिस्से को खत्म कर। कहा नहीं हम पूछना चाहेंगे। कहा अच्छा हिम्मत है तो सुन, मेरे तरकश में 3 तीर थे, मैंने देखा असर आशूर हुसैन इब्ने अली अपने ख्याम से चले आए और अबा की दामन में ऐसे छुपा छुपा के ला रहे थे जैसे तकीर भरे खुराक को ला रहे हो। लेकिन जैसे ही अबा का दामन सरकाया, फौजी अशिया मुंह फेर फेर के रोने लगी, जो ही नन्हे से बच्चे ने प्यासी जबान सूखे लबों पर फेरी, ऐसे में हुरमुला खामोश हो गया। मुख्तार ने कहा है हुरमुला फिर क्या हुआ हुरमुला? कहा फिर यू हुआ जैसे ही फौज में कोहराम उठा, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया मिटा दे भरे घर के चैन को। ए हुरमुला मिटा दे भरे घर के चैन को, फिर फोन करने खत्तात कलामे हुसैन को। फिर कहा इस मार्के के जायजे तकमील के लिए दो काम इब्ने साद ने एक तीर से लिए। ये जुल्म इनकलाब की होती रही शदीद, ये जंग इनकलाब की होती रही शदीद। ये जंग इनकलाब की होती रही शदीद, उठते रहे हुसैन बिखरता गया यजीद। आज भी अगर सारी जमाने की कौम पलट कर देखती है करबला की तरफ तो इस चश्माहे की शहादत को देखकर कांप उठती है। अल्लाह अकबर, क्या 6 माह के शीरखार भी शहीद होते हैं? कहा बोलो और मला तूने क्या किया? कहा वो 3 सरकश तीर से पहला तीर मैंने मारा था अब्बास की मश्क की जानेब, दूसरा तीर मैंने मार किया जब हुसैन इब्ने अली जुलजना से जमीन पर आ रहे थे, और तीसरा तीर हुरमुला का मत पूछे अमीर, मैंने जो ही चिल्ले में तीसरा तीर गया है। हुसैन इब्ने अली अबा के दामन में बच्चे को छुपाने लगे, लेकिन जो ही तीर का चलना था बाजू हुसैन शहीद हुआ, बच्चा बाप की गोद में उमर के रह गया। का फिर क्या हुआ हुरमुला? का नहीं मालूम, खून असगर उठाकर आसमान की तरफ फेंकना चाहा, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, चेहरे पर मल लिया हुसैन ने, हराम की तरफ बढ़े, 7 मरतबा आगे जाते थे 7 मरतबा पीछे आते थे। अल्लाह अकबर, उस माँ के कलेजे को सलाम करो, दया खैमा उलट कर कहती है मौला मौला मेरा बच्चा पानी पी चुका क्या? जहाँ करे सवाल पर शर्मा के रह गए, चादर फिसर के चेहरे से सरका के रह गए। आओ मेरा बाप, आओ मेरा बाप, जमीन करबला को अपनी अमानत सौंप दो। बाजू थामा माँ का, बिठा दिया खैमेदार की पुष्ट पर, जुल्फिकार से लहदे असगर खोदी। खुदा हाफिज व नासिर है असगर, खुदा हाफिज व नासिर। माँ का कलेजा सीने में तह रहा है, जब 11 मुहर्रम को सरों की गिनती होती है और गोद का पाला नजर नहीं आता। और मुला ने सा खोदता हुआ दौड़ा पुष्ट खैमे रबाब की तरफ, और जूही नजर गया सीने पे हाथ रख के कहा, या जरा, या जरा कमारे ना।
देती थी बानों सदा, आओ झुलाओ तुम्हें, देती थी बानों सदा, आओ झुलाओ तुम्हें, बख्श दो मेरी खता, आओ झुलाओ तुम्हें, बख्श दो मेरी खता, आओ झुलाओ तुम्हें, आजा मैं कुर्बान जाऊं, आओ गले से लगाऊं, इतने हुए क्यों खफा, आओ झुलाऊं तुम्हें, इतने हुए क्यों खफा, आओ झुलाऊं तुम्हें, जानिए झूला तेरा दम मेरा ले जाएगा, पालने वाला آؤ جھلاؤں تمہیں پالنے والے فدا, آؤ جھلاؤں تمہیں مانا صحیح لوں جان کہنا مگر میرا ماں مرتی ہے بانو یہاں آؤ جھلاؤں تمہیں مرتی ہے بانو یہاں آؤ جھلاؤں کچھ نہ کہا میرے لا بان کے زخمی گلا آؤ جھلاؤں تمہیں بان کے زخمی گلا آؤ جھلاؤں تمہیں دیتی تھی بانو صدا آؤ جھلا تمہیں جانیے جھولا تیرا دم میرا لے جائے گا فدا آؤ جھلاؤ تمہیں پالنے والے فدا آؤ جھلاؤ تمہیں حسین 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 حسین
حسین
حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین جب راستہ جیسی حسین 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 ننے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے شاہ تو آئے جانے مادر شاہ تو آئے جانے مادر تم نہیں آئے ننے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے سب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر سب سے کھڑی ہوں خیمے کے در پر آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساغر آنکھوں میں لے کر اشکوں کے ساغر پیش کروں آ جا تو اصغر پیش کروں آؤ اصغر تم نہیں آئے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے